संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अपन ने आचार्य अमृतचंद्र के मंगलाचरण पर चर्चा आरंभ की थी, क्या उसमें उस समय सार भगवान आत्मा को नमस्कार किया गया है जो है ज्ञान स्वभावी है, सर्वज्ञत्वादी शक्तियों से संपन्न है और स्वानुभूति से प्रकाशित होता है, ऐसे भगवान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसमें भावाय कहकर द्रव्य की बात की, चित स्वभावाय कहकर गुण की बात की, सर्वभावान्तरच्छेदे इसमें सर्वज्ञत्वादी शक्तियों की बात की और स्वानुभूत्या प्रकाशते इसमें पर्याय की बात की। चार विशेषण चार तरह से हैं और उनका भी क्रम भी है कि पहले वस्तु का अस्तित्व सिद्ध हो तब बाद में ये बात आए कि वो कैसी है। जैन न्याय शास्त्रों में पहले सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की है और बाद में विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की है, खासकर आचार्य समंतभद्र के अकलंक के शास्त्रों में। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि उसे कहते हैं कि पहले तुम ये तो साबित करो कि दुनिया में सर्वज्ञ की सत्ता संभव है या नहीं, सर्वज्ञ कोई है या नहीं, अब कौन है और कौन नहीं है का झगड़ा बाद में निपटेंगे, है ना? महावीर हैं कि बुद्ध हैं कि कपिल हैं, ये झगड़ा बाद में होगी, पहले हो सकता है ये मानो, उसे बोलते सामान्य सर्वज्ञत्व सिद्धि, जो आत्मीमांसा की पांचवी गाथा कारिका से शुरू होती है और आठवीं कारिका तक लगभग चलती है। फिर जब बाद में विशेष सर्वज्ञ सिद्धि आती है तो वो कहते सत्वम एवासि निर्दोषो, हे भगवान आप ही एकमात्र निर्दोष हो, इसका नाम है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। तो ऐसे ही पहले सामान्य माने द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करो, फिर ये सिद्ध करो कि वो कैसा है, फिर ये बताओ कि उसमें और क्या क्या माल भरा पड़ा है, फिर ये बताओ कि वो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। इस जगत में भी किसी भी चीज के समझने समझाने का यही क्रम है कि नहीं? नहीं, कोई चीज अपन व्यापार करना है, कहीं जमीन खरीदना है, कुछ भी करना है तो पहले कहते पहले नक्की करो कि उपलब्ध है। साहब यहां भाव तो 40,000 बरग गए हैं बापू नगर में, कई बाद में बताना 40 है, 50 है, 25 है, पहले बताओ कि कहीं उपलब्ध है, भाव ही भाव हो और कोई बेचवाल हुए ही नहीं तो उस भाव की क्या कीमत, अथवा कोई खरीददार ही नहीं हो। हम कहते हैं 40,000 है, लेकिन 40,000 में कोई खरीददार है नहीं तो कोरा भाव है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। बाजार में वस्तु हो उस रूप में उपलब्ध तो उस भाव की कीमत है, यदि वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उस भाव की कोई कीमत नहीं है। इसलिए पहले वस्तु की उपलब्धि नक्की करते हैं। आप कह दें कि हमारे यहां तो गेहूं का भाव 3 रुपए किलो है, कैसा मुझे चाहिए 1 लाख बोरी मिल जाएगी, कहिए 1 किलो की बात करो। तो बड़े बड़े मान लो बिस्कुट बनाने की कंपनियां हैं, अब उन्हें तो लाखों बोरी चाहिए, तो जहां वो लाखों बोरी उपलब्ध होगी वहां वे 25 रुपए किलो होगा तो भी वहां से खरीदेंगे, और 1 किलो तुम 3 रुपया किलो भी दोगे तो तुम्हारा नहीं लेंगे। क्यों? वो कहते हैं कि हमारी जो मांग है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, जितने में लाखों बोलियां जिस भाव में उपलब्ध हों वो भाव है, और वो भाव है कि लाख बोरी हम आज बेचना चाहें जिस भाव में बिक जाएं, वो भाव है वास्तव में लेने देने का। लेने का अलग होता है, देने का अलग होता है, थोड़ा बहुत कम होता है फर्क, ہمیں بیچنے جاؤ تو دو پیسہ کم ملتے ہیں، خریدنے جاؤ تو دو پیسہ زیادہ لگتے ہیں، اتنا تو ویاپاری سمجھتا ہے، اور بھاو ان دونوں کے بیچ ہوتا ہے۔ تو پہلے بھاو ہے کہ نہیں ہے، تو بھگوان آتما ہے، ایسا تو نہیں ہے چار باغ جیسا کہ پنچ بھوت مل کے آتما بن گیا ہے، کہ جینیوں میں ایسا کون ہوگا، کہ جینیوں میں ایسا کون نہیں ہے، کیونکہ جسے یہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں جنم کے پہلے تھا اور مرن کے بعد رہوں گا، وہ چار باغ ہی ہے۔ تو آپ کہو کہ نہیں نہیں ہمیں تو پکا بھروسہ ہے، تو پکا بھروسہ ہے تو پربھو کے بارے میں رنج ماتر بھی سوچ چنتن تمہارا کیوں نہیں چلتا ہے؟ اس بھو کی آجیوکا کی ویوستھا کے لیے تو آپ دن رات ایک کرتے ہو، اور اگلے بھو میں جانا ہے تو کیا ساتھ جائے گا، کیوں وہاں کیا ہوگا، اس بھوشیہ کے بارے میں وکلپ بھی نہیں آتا ہے، تو کیسے مانے کہ آپ یہ مانتے ہو کہ بھوشیہ میں بھی ہماری ستا رہنے والی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں پہلے آتما کا انادی انت استتو سویکار کرو، یہ بھاو آئے اتپاد و دھروم یوکتم ست۔ پہلے تم درب، بھگوان آتما ایک درب ہے، لیکن اب کون سی 73ویں گاتھا میں ہے نا، میں ایک آکاشا جی کی بھانتی، ایسا لکھا ہے آکاشا جی کی بھانتی وستو وشیش ہوں، آکاشا جی کی بھانتی لکھا، آکاش تو ایک درب ہے نا پہلا سن جی، تو میں نے میں ایک درب ہوں، پہلے یہ نکی کرو، آتما ہوں بعد میں چلے گی بات، میں ہوں، میں ایک درب ہوں، اور درب کی جو پریبھاشا اتپاد و دھروب یوکتم ست، وہ میں تینوں میرے میں ہیں، اس درب کی بات کرو پہلے تم، پھر اس کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہے یہ تو نکی ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ بھئی اب وہ کیسا ہے، تو کہ چت سوبھاو آئے چیتن سوبھاو میں ہے، میرا سواب چتی شکتی سے سمپن ہے، چتی شکتی اس میں سے ہی نکلی ہے، اجڑات میں کہا چتی شکتی کہ میں جڑ پدارتھ روپ نہیں ہوں، میں ایک چیتنیہ پدارتھ ہوں، پہلے تو ہوا کہ میں پدارتھ ہوں، بھاوا میں کیا ہوا نکی، کہ میں گدھے کے سینگ کے سمان کوری کلپنا ماتر نہیں ہوں، میں ایک ٹھوس وستو ہوں، اسنکھیات پردیسی انند گنوں کا اکھنڈ پنڈ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جڑ روپ نہیں ہوں، جڑ نہیں ہوں، میں چیتن ہوں، اس کا نام ہے چتی شکتی، من میں چیتنیہ سوبھاوی ہوں، میں گیانانند گیان سوبھاوی ہوں۔ یہ چتی میں گیان اور درشن دونوں آتے ہیں، یہ درشن میں نے سمما درشن والا درشن نہیں، یہ درشن گن والا درشن، جس کا چکشو درشن اچکشو درشن وہی درشن اور کیول درشن جن کا بھید ہوتے ہیں، وہ چتی شکتی میں دونوں آتے ہیں، خیال میں نا، تو میں چیتنیہ سروپ ہوں، میں درب ہوں اور میں جڑ نہیں ہوں، یہ دوسری بات ہوگی۔ اب کہتے جڑ نہیں ہو تو کیا ہے تمہارا کام سوبھاو، کیا کرنے کا تمہارا سوبھاو ہے؟ تو سرو بھاوان ترچھدے، کہ سرو جو پدارتھ ہیں ان کو جاننا دیکھنا میرا سوبھاو ہے، یہ سروجاتی شکتیوں کی بات ہے، یہ پریائے کی بات نہیں ہے، یہ سروگ پریائے کی بات نہیں ہے، سروگ تو شکتی میرے میں ہے، سرو درشت تو شکتی میرے میں ہے، ایسا نہیں لگا کہ دھی سکتی ہے جان سکتی ہے، اس کی بات نہیں کری، بلکہ سروگتوادی سرو بھاوان ترچھدے، سر پدارتھوں کو جاننے کی شکتی والا میں ہوں، کہ بھئی ایسا تم ہمیں کہاں ملو گے، کیسے پراپت ہو گے؟ تو کہتے ہیں سوان بھوتیا پرکاش تے، وہ سوان بھوتی میں پرکاشت ہوتا ہے، سوان بھوتی کرو گے تو وہ بھگوان آتما تمہیں پراپت ہوگا۔ जो समय सार की मूल विषय वस्तु है, एक दो पंक्तियों में अमृतचंद ने पूरी समेट ली कि नहीं समेट ली। और इसी भाव को मैंने मंगलाचरण का जो अभी आपने पाठ किया ना, थोड़ा और विस्तार से समेटने की कोशिश की, जैसे सब लोगों के ख्याल में आए कि जैसे भगवान आत्मा की हम बात करने जा रहे हैं, वो शुद्धा शुद्ध नहीं है, बद्धा बद्ध नहीं है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, इन सबसे पार है और कैसा है, वो सब पुण्य पाप अधिकार तक जो जो विशेषणों की बात उनकी कही है, बाद में तो वो आश्रम से भिन्न और इनसे भिन्नता की बात ज्यादा शुरू हो गई, तो वो बताने की कोशिश की है। देखो हम ऐसा भावांतर भावाय चित स्वभावाय सर्वभावांतर छिदे समय साराय नमा, ये क्यों छोड़ दिया स्वानुभूत्या चकास्ते, क्यों कि विद्यार्थियों से पूछता हूं क्यों कि नमा के योग में चतुर्थी होती है ना, तो जिन जिन में चतुर्थी है उनको पकड़ा, कि स्वभावाय में भी चतुर्थी है, भावाय में भी चतुर्थी है, सर्वभावांतर छिदे में भी चतुर्थी है। अब तो बता रहे हैं कि स्वानुभूत्या चकास्ते, इसमें तो वो है ही नहीं कि चतुर्थी, वो स्वानुभूति से प्रकाशित होता है। ऐसे भगवान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं, अपने भगवान आत्मा को नमस्कार करते हैं क्यों? शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि एक द्रव्य में बंध बंधक भाव होता ही नहीं है। जब कोई बंध में नमस्कार करता हूं ऐसी बात आएगी तो कोई दूसरा ही सामने खड़ा होगा, लोग में ऐसा अच्छा लगता है, इसमें आपसे कोई नमस्ते नमस्कार नमस्कार प्रणाम, तो मैं आपने को कहूंगा नमस्कार प्रणाम, पंडित जी आपने सुना क्या नहीं सुना, इसलिए लोक में बंद बंधक भाव दूसरों के साथ ही होता है, अकेले में नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं ये तो व्यवहार का कथन है, निश्चय से तो अब अकेले में ही होता है, पर के साथ बंद बंधक भाव तो गुलामी का प्रतीक है, तो अपने में बंद बंधक भाव में तो जगत में जैसी बंधना होती है वैसी बंधना नहीं होती है। तो नमा माने हाथ जोड़ के नमा माने ऐसा नमस्कार नहीं है ये, तो क्या कि मेरा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग इस भगवान आत्मा में झुकता है, उसमें जाता है, यही उसका विनय है, यही उसकी नमस्कार है। क्यों किसी अपन पूज्य गुरुदेव श्री को नमस्कार करें और जब तक वो उनके ख्याल में नहीं आए कि हमने नमस्कार किया तब तक हमें संतोष नहीं होता ना, तो फिर और जाए कहते हैं नमस्कार साहब, फिर तीसरी दफे करते हैं क्यों, और जब तक वो फिर वो ऐसा कर दें बस खत्म, पढ़ते पढ़ते में ऐसा कर दें बस ठीक है, हो गया कि रिकॉग्नाइजेशन हो गया, यानी हमने तुम्हारी बात सुन ली, उनने सिर्फ यही कहा, ये नहीं कहा नमस्ते, नमस्ते का बदला नमस्ते नहीं कहा, जय जनंद का बदला जय जनंद नहीं कहा, क्या किया बस इतना कहा तो स्वीकार। आप जानते हैं सेना में एक नियम है कि जो सैनिक होता है ना नीचे का सैनिक, तो अपने ऊपर के सेनाधिकारी को नमस्कार करता है, और उनके नमस्कार करने की एक प्रक्रिया बिल्कुल सुनिश्चित है, एकदम ऐसा खड़ा होके और जैसे बोलते हैं सैल्यूट मारना जो भी समझ लिया आप, उनकी बोझ उसी तरीके से वो करेगा। उसने ऐसा किया और ऑफिसर ने उसका जवाब नहीं दिया तो ऑफिसर पर केस चल सकता है, साल दो साल की सजा हो सकती है। क्या उस नमस्कार का जवाब ऑफिसर को देना ही चाहिए, तो आप देख राष्ट्रपति आता है ना तो सब सैल्यूट करते हैं, तो राष्ट्रपति भी ऐसा ही करता है, और वो भी वही तरीका है, वो ऐसा स्टेप नहीं कर सकता गुरुदेव जैसे कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता है। वो सारी सेना सैल्यूट करेगी तो राष्ट्रपति अपना सेनापति माना जाता है ना, प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति ही है, तो उसको भी उसी विधि में वो सैल्यूट स्वीकार करना पड़ता है। ये तो दो द्रव्यों के बीच में होने वाला बंध बंधक भाव है, तो एक द्रव्य के बीच में ऐसा बंध बंधक भाव नहीं होता, वो कहते भगवान आत्मा का उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में झुक गया, बस यही निश्चय से बंद बंधक भाव है, बस नमा ये ऐसा मैं भगवान आत्मा में अपने उपयोग को ले जाता हूं। देखो इस प्रकार देवाधिदेव समय साल रूप जो भगवान आत्मा है उसको नमस्कार किया। अब इसको वो कहते हैं आत्मा को नमस्कार किया तो वो देव को नमस्कार हो गया। अब दूसरी जिनवाणी की चर्चा करते हैं, देव शास्त्र गुरु है ना अपने, तो आत्मा को नमस्कार किया उसको अरहंत देव सिद्ध देव को नमस्कार मान लिया, देव को नमस्कार मान लिया कि समय साल निधि देव है, अपने वो पूजा में पंक्ति है ना क्या, समय सार जिन देव है जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर ग्रंथ गुरु करे कर्म की हानि। ये मैंने सन 56 में लिखी थी पूजा, 56 समझते हैं 56, 50 साल हो गए पूरे। तो उसमें उत्तम चंद जी समय सार जिन देव है, जिन देव समय सार, समय सार का जो प्रतिपाद भगवान आत्मा है वो जिन देव है, और जिन प्रवचन जिन वाणी, जिन्होंने भगवान का प्रवचन माने प्रवचन सार वो जिनवाणी है, और नियम सार निर ग्रंथ गुरु, नियम सार में जो वस्तु का स्वरूप जिस साधु का निश्चय स्वरूप बताया है वो जिसमें पालना है वो गुरु है। इसलिए समय सार प्रवचन सार और नियम सार इन तीनों को देव शास्त्र और गुरु के रूप में मानकर वहां नमस्कार किया है। तो पंक्ति है ना, समय सार जिन देव है जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर ग्रंथ गुरु निहानी। मैंने इस पंक्ति में से ये भाव मेरे को ख्याल में आया था जो मैंने ये समनामा समय सार में से, और उसमें जो मैंने बनाया था ये छंद उसमें ये भावना काम कर रही थी, ख्याल में है ना। अब जिनवाणी को नमस्कार करते हैं, अनंत धर्मणस्तत्व श्री प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। अनंत धर्मणस्तत्व पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, ये प्रत्यगात्मना जो शब्द है इसका स्पष्टीकरण बहुत कम मिलता है, प्रत्यगात्मा प्रत्यगात्मा ऐसा कह के छोड़ दिया है। लेकिन एक टीका है शब्द दशांगी टीका शुल्लक मनोहर लाल जी बरनी की, उसमें इसका बहुत स्पष्ट अर्थ लिखा है, और जिसका भाव यह है जो इसमें मैंने नीचे लिखा है। देखो पर पदार्थों उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले कथनचित अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार अनंत धर्मात्मक निज आत्म तत्व को देखने वाली जानने वाली प्रकाशित करने वाली अनेकांतमयी मूर्ति सदा ही प्रकाशित रहे जयवंत रहे। सर्व पर वस्तुओं से भिन्न नैमित्तिक प्रभावों से भिन्न अपने ही स्वरूप में तन्मय आत्मा प्रत्यग आत्मा कहलाता है। ये लिखा ना नीचे प्रत्यग आत्मा का मतलब क्या, क्योंकि अपन ज्ञायक आत्मा परंपरा में भाव वाला आत्मा और ऐसे आत्मा के शब्द नाम तो बहुत सुने हैं, लेकिन अभी भी अपने मोक्षु समाज में ये प्रत्यग आत्मा शब्द प्रचलित नहीं हुआ। वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ही अर्थ में है, ख्याल में है ना, लेकिन ये प्रचलित नहीं है। यदि किसी से भी पूछा तो वो विद्वानों का ध्यान भी इसकी तरफ नहीं जाता है ना। तो उस वक्त मैंने बहुत देखा तो यहां कहीं नहीं मिला, तो मुझे वो बरणी जी की टीका में मिला। देखो क्या तो अनेकांतमयी मूर्ति, अब जिनवाणी कैसी है कि अनेकांतमयी मूर्ति मानो अनेकांत की मूर्ति है, अनेकांत ही मूर्ति रूप होकर के हमारे सामने आ गया है। वास्तव में ये जिनवाणी का क्या अनेकांत को नमस्कार है, अनेकांत का जिसमें विशिष्ट वर्णन है उस यादवादमयी जिनवाणी, वो अनंत धर्मणस्तत्व पश्यति प्रत्यगात्मना के प्रत्येक आत्मा में जो अभी आत्मा का स्वरूप बताया ना कैसा, पर से भिन्न और पर्यायों से भिन्न है ना, निमित्तक भावों से भिन्न। ये पर से भिन्न और निमित्तक भावों से भिन्न का मतलब क्या? सुशील जी, अपने अनुभव चलता है पर से भिन्न और पर्यायों से भिन्न, क्यों? और विकारी पर्यायों से भिन्न और निर्मल पर्यायों से भिन्न। लेकिन इसमें तो ये लिखा है निमित्तक भावों से भिन्न, तो निमित्त भाव का क्या अर्थ है बोलो राजेंद्र पंसल? ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल रहा हूं, कोई ज्यादा चिंता नहीं करना। देखो, जिनमें कर्म का उदय निमित्त है उन भावों को निमित्तिक भाव कहते हैं, यानी मोह राग द्वेष के परिणाम। क्यों उत्तम जी? ठीक है ना, उसे निमित्तिक भाव कहते हैं। तो मैंने विकारी भावों से, इसके लिए निमित्तिक भावों का शब्द है इसमें, है ना। देखो, पर सर्व पर वस्तुओं से भिन्न, ऊपर लिखा है ना, पर पदार्थों उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार, लिखा ना, आ गया ख्याल में ये बात? अच्छा देखो, फिर कथनचित भिन्न लिखा, ये आप जाके उसमें भी देख लेना, उन टीकाओं में सब में, जैतन जी छाबड़ा की में और जिसमें जिसमें भी आपको विकल्प हो, सोनगढ़ की में, जयपुर की में, जहां की भी में। तो ये कथनचित भिन्न क्यों लिखा? भिन्न ही कह देते ना डॉक्टर साहब, क्यों उत्तम जी? है कुछ दम इसमें के नहीं है, है? क्यों? क्योंकि जैसा कि उत्तम चंद जी समझा रहे थे कल कि अपने परिणामों का करता अज्ञान दशा में राग आदि का करता है, ज्ञान दशा में ज्ञान भाव का करता है। अब अज्ञान दशा में है कि किस दशा में है, लेकिन है तो ना, है तो आत्मा ही ना, अज्ञानी आत्मा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उसका आत्मा ही। तो वो कहते कथनचित भिन्न, क्योंकि वो आत्मा की ही पर्याय है, वो तारत गुण की ही विकारी पर्याय है, ख्याल में आई ना, इसलिए आत्मा से कथनचित भिन्न है वो। उन्होंने बहुत अच्छे शब्द किए, प्रवचन सार में आए हैं, उत्तम चंद जी ने बताए थे आपको कि वो ये पर्याय द्रव्य से अनन्य जानो, यही पंक्ति थी ना, कौन सी पंक्ति थी वो? 308 गाथा से लेकर 311 गाथा समय सार की है ना, तो उसमें लिखा ना, उसकी टीका में पहली पंक्ति क्या है? जीवो ही तावत कृमिनिमात्म परिणामयी रुतपद्ध मानो जीवा एव नो अजीवा, अजीवो भी कृमिनिमात्म परिणामयी रुतपद्ध मानो अजीवा एव नो जीवा। तो उसने अपने त्रिगुण पर्याय लिया उसने, कि वो अपनी पर्याय है। राग जो है पुद्गल की पर्याय नहीं है। आज भी गुरुदेव के प्रवचन में सुबह जो कैसे चल रहा था, उसमें बार बार ये खुलासा वो कर रहे थे कि वो जड़ में थोड़ी होता है राग, वो जड़ की पर्याय नहीं है, वो आत्मा की ही पर्याय है। तो वो कथनचित भिन्न का मतलब ये है कि अन्य रूप भिन्न। आप जानते हो भिन्नता और अन्यता इसमें क्या फर्क है? सुनो, भिन्नता दो प्रकार की होती है, नोट कर लेना, और प्रवचन सार में है, मैं अभी बता रहा हूं। भिन्नता दो प्रकार की होती है, एक का नाम है पृथकता और एक का नाम है अन्यता। जब हम कहते हैं कि एक दो द्रव्य पृथक पृथक हैं और हम कहते हैं दो गुण अन्य अन्य हैं, वास्तव में दो गुण पृथक पृथक हैं, कहना सही नहीं है, भाषा चलती सब है। कहीं आचार्यों ने भी प्रयोग कर लियो तो लेकर के मुझे दिखाने मत आना, क्या? लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो परम सत्य है, और शास्त्र के आधार से, कुंड कुंड के आधार के साथ है कि एक द्रव्य के बीच में जो भिन्नता है, द्रव्य गुण पर्याय के बीच में, उसका नाम है अन्यता। यानी ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है और दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है और जानना अलग है। द्रव्य और पर्याय, गुणों पर्याय के बीच का अंतर है, ये अलग अलग, ये अन्यता के अर्थ में है, इसमें प्रवेश भेद नहीं होता है, द्रव्य भेद नहीं होता, प्रदेश भेद नहीं होता, सिर्फ भाव भेद होता है। गुरुदेव की भाषा में भावे भेद छे, है ना, भावे भेद छे, भावे भेद छे। और एक होती पृथकता, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय सबका भेद होता है, मेरा आत्मा आपसे पृथक है, भिन्न नहीं, वो अन्य नहीं है। अब भिन्न शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। वो पृथक वाले को भी हम भिन्न कह देते हैं और इस अन्य वाले को भी भिन्न कह देते हैं। इसमें हमारे को भिन्न शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, इसी वजह से हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जब मैंने 12 भावनाएं लिखी थी तब इसमें मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझे हथियार डालना पड़ा। मैं बताऊं कहां की थी, सुमर भावना में देखो क्या है इसमें। सुमर भावना बोलो, सुमर भावना शुरू करो है? सब गायब है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है रागे जिसमें किंतु है जो रागे से भी अन्य है। किसी का ध्यान नहीं गया होगा कि देह से भिन्न बताया और राग से अन्य बताया है? क्यों वो भिन्न ही द्वारा लिख लेते तो अच्छा नहीं लगता है? अब आचार्यों ने भी कई जगह ऐसी मतलब प्रयोग कर दिए हैं, लेकिन मैंने भी आगे गुण भेद से भी अन्य है, अन्य लिखना चाहिए था मुझे। मैंने कई दफे अन्य लिखा, फिर काट के भिन्न कर दिया, फिर भिन्न काट के अन्य कर दिया, 25 दफे अन्य से भिन्न, भिन्न से अन्य, अन्य से भिन्न किया, पर अंत में फिर मैंने वो भिन्न ही लिख दिया। गुण भेद से जो भिन्न है वो भेद से भिन्न, वो अनुप्रास है ना भाषा का, समझे ना? क्योंकि आचार्य उन्हें भी किए हैं, लेकिन हमको वो समझना पड़ेगा जो अंतर है, उसको निभाने की कोशिश की, लेकिन नहीं निभा। ख्याल में आया ना आपके में? क्योंकि वो उसके अंतर के को तो कोई नहीं समझ पाता, और लेकिन छंद में जो मजा इसमें आता है गुणभेद से भी भिन्न है, वो गुणभेद से भी अन्य है में नहीं आता। वो ऐसे बहुत प्रयोग हैं इस साहित्य में आते हैं, जब लिखते हैं पढ़ते हैं, और कौन जनता कितना समझती है। जो हम जितना लिखते जितनी जितनी बातें उसमें सोच में माथा मार मार के लिखते हैं, उसमें कितना अंश आप समझ पाते हैं ये हम ठीक है, क्या करें, उपाय नहीं है कोई दूसरा है, जो है वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखो तो कहते हैं पर पदार्थों, मैं उसी का अर्थ पढ़ रहा हूं, उनके गुण पर्याय रूप भावों पर पदार्थों के, तो द्रिगुण पर्याय तीनों आ गए पर पदार्थों के। तो ये तो पर से भिन्नता की बात में आ गए कि पर द्रव, पर का द्रव्य भी, पर का गुण भी, और पर की पर्याय भी, अपने पर्यायों से भिन्न के नहीं, ये पर्यायों से पर की पर्याय है ना, इसलिए पर्यायों से भी भिन्न है, अन्य नहीं है। ख्याल में ना, क्योंकि पर की पर्याय है, ये पर से ही भिन्नता की बात चल रही है। और भावों पर्याय रूप भावों और पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों आगे ना से कथनचित भिन्न है ना। एक कथनचित शब्द आचार्य का लगा हुआ है, एकाकार अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा कैसा है, निज आत्म तत्व को देखने वाली, जानने वाली, प्रकाशित करने वाली अनेकांतमयी मूर्ति सदा ही प्रकाशित रहे जयवंत वर्ते। अब अपन कहते हैं जिनवाणी को नमस्कार है, नमस्कार तो लिखा ही नहीं है, क्यों बोलो? अरे भाई है ना नमस्कार लिखा ना जयवंत वर्ते, ये जयवंत वर्ते में नमस्कार होता है ना, क्यों? अभी अपने गुरुदेव पधारे वहां से और अपन सब बोले गुरुदेव श्री की जय, गुरुदेव श्री की जय, गुरुदेव श्री की जय, तो नमस्कार हो गया कि नहीं हो गया? बोला आचार्य कहते हैं आशीर्वादमक असद नमस्कार है, अपन अपने गुरु को आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद का भी अर्थ हम सही नहीं समझते हैं। ये जो हम किसी की जो शुभ कामना करते हैं वो आशीर्वाद ही है, छोटा बड़े को देता है, बड़ा छोटे को देता है, लेकिन अपन ने बोले आशीर्वाद तो बड़ा दे, क्यों छोटे वाला क्या देता है प्रणाम कर, वो आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, माने वो शुभ भाव की शुभ कामना नहीं कर सकता है क्या आप दे? तो कहते जिनवाणी जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो उसमें नमस्कार हो गया, अकेले एक नमस्कार शब्द बोलने से ही नमस्कार नहीं होता है, समझे ना। हम उनके प्रति अपना सद्भाव प्रकट किया, हो गया नमस्कार। कि ऐसी जनवाणी सदा जयवंत बरते, क्या मतलब? उसकी गांव गांव में जय के नारे लगते रहे, क्यों बोला? अरे इसका नाम जयवंत बरते नहीं, माने उसका पठन पाठन निरंतर होता रहे। कोरे जयवंत बरते के आशीर्वाद से वो जयवंत नहीं बरतने वाली है, उसका निरंतर पठन पाठन हो तो उससे परंपरा आगे बढ़ती रहे। उसका तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार में जिसका महान योगदान हो उसका नाम है जयवंत बरतना। और वो नहीं तो मर जाना हो गया, जयवंत नहीं बरती हुई, बिना मरी जैसी पड़ी रही, सास अलवारियों में पड़े रहे। देखो एक बहुत मार्मिक बात इस वक्त मैं आपसे कहता हूं, गंभीरता से सुनना और विचारना। कि जिनवाणी की प्रसार प्रसार और सुरक्षा, इसके क्या उपाय हैं, क्या करें हम तो जिनवाणी सुरक्षित रहे। अब हम सब चिंता करते हैं कि नहीं, हमारा साहित्य सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे जिनबिंब सुरक्षित रहना चाहिए, है ना, और वो बर्बाद हो रहे हैं, तो उसके क्या क्या उपाय हैं। तो कहते एक उपाय तो ये है कि उसको लोहे के पत्रों पर लिखवा कर जमीन में गाड़ दें, ताम्र पत्र पर लिखवा दें, सोने के पत्र पर लिखवा दें, जमीन में गाड़ दें, तो जब प्रलय भी आ जाएगा तो अंदर दबी रहेगी, और कभी फिर नए लोग पैदा होंगे, अब मकान मकान बनाएंगे तो नीम में निकल आएगी, तो उसे भी पढ़ लेंगे। एक तो सुरक्षा का उपाय ये है, क्यों एक ये है कि संगमरमर के पादियों पर लिखकर दीवारों में जड़वा दो, क्योंकि भयंकर कोई तूफान आया, आग लग गई, और यदि ये बरसात हो गई तो ये शास्त्र जो है ना, कागज के शास्त्र सब गीले हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, तो क्या करें, कम से कम दीवारों पर सुरक्षित रहेगी, हम फिर कागज को उतार लेंगे। ये भी उपाय, यानी जो अपन कर रहे हैं ना सब, ये जिनवाणी की सुरक्षा के उपाय है। कोई सो नहीं, हमने पंच परमा का मंदिर बना दिया, ये बना दिया, माने उसके पीछे हमारी क्या भावना है कि जिनवाणी बची रहे किसी ना किसी रूप में, कभी कितना ही प्रलय आवे लेकिन वो पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाए। कब वो गिर भी जाएगा परमा का मंदिर तो, अरे वो पाटिया भी गिर जाएंगे, लेकिन उसमें पाटियों के टुकड़े भी होंगे, उनमें जिनवाणी लिखी मिलेगी, नहीं ना। शिलालेखों में ये सब जो है ना, ये सब चीजें हैं, ये शिलालेख ही है, मैंने शिला में लिख दिया उसका नाम शिलालेख, क्यों आए ना समझ। अब वास्तव में ये जड़ जिनवाणी तो जिंदा रह जाएगी, इससे ताड़पत्रों में जिंदा है ना आपके दक्षिण भारत में, लेकिन उन ताड़पत्रों को कोई पढ़ने वाला नहीं रहा तो बोलो क्या होगा, दर्शन कर लो, पूजा कर लो उसकी, सर्विस कर लो। ये दीवानों पर लिखा हुआ आत्मख्यात जी को पढ़ने वाला कोई नहीं रहा तो क्या होगा बोलो है? ये संगमरमर के पाटियों पर पढ़ने वाला कोई नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये अधूरा प्रयास है, जिनवाणी की सुरक्षा का ये सच्चा प्रयास नहीं है। उसे पढ़ने वाले पढ़ाने वाले जिंदा रहने चाहिए, ख्याल में आई ना, तब जिनवाणी वास्तव में सुरक्षित रहेगी और जन जन तक पहुंचेगी। मैं लोगों को बात कहता हूं, दीवार पे पादियों पर अपन लिखवा देते हैं ना, तो दीवार पे पादियों पर लिखी है तो जो लोग उसमें आएगा देखने वो वहां देख पाएगा, लेकिन कभी बैठ के वहां पढ़ता नहीं है कोई, बड़े से बड़ा पंडित भी नहीं आगे बैठ के पढ़ रहा हो वहां पर, क्यों तो देख सकता है आकर के लिखी है यहां। लेकिन एक किताब है आपके गांव में होगी तो आप पढ़ भी सकते हैं इसे, समझे ना, पढ़ेंगे भी। तो ये जिनवाणी के सुरक्षा का बड़ा साधन ये है कि घर घर में ये समय सार पहुंचाना कागज का, कहीं दीवार पे लिखवा देना है, तो ताल पत्र में जमीन में गाड़ देना है, वो सब जरूरी है। मैं तो तुलना कर रहा हूं कि इसके बिना वो निरर्थक है, ख्याल में आई ना। अभी तो क्या करे, कैसा विद्वान लेना चाहिए, विद्वान कैसे रहेंगे, کہ جیسے تم نے دیوالوں پہ کھدوائی ہے نا، پاتیوں پہ لکھوائی ہے نا، اس کا تو کچا مال ہے سنگمرمر، اس کا کچا مال ہے چیتن، اپنے بچے، اپنی سنتانیں، یہ چیتن ہیں، یہ کچا مال ہے کیوں؟ اور ان کے ماتھے پہ کوترنا، وہ جو کھجانے کے راستے والوں میں کوترنے والا ملتا ہے وہ کام نہیں آئے گا، سمجھے نا؟ اسے گاندھی نگر روڈ پہ آنا پڑے گا، مورتی محلہ میں نہیں ملے گا وہ کوترنے والا، کہاں ملے گا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی ان کے دماغ میں ایک کوترنا پڑے گا، ایک ایک شبد، تو کتنا کٹھن کام ہے، کیونکہ کچا مال ملنا مشکل، سنگ مرمر تو کھلانا کتنا لاؤ نہیں تو سوئٹزرلینڈ سے آ جائے گا، یہاں نہیں ملے گا تو کیوں نردوش پتھر والا، لیکن اب یہ سوئٹزرلینڈ سے آنے والے تو ہے نہیں، یہ تو آپ کے ہی گھروں میں سے ہم کو کرنا پڑیں گے اکٹھے، کیوں؟ اب کچا مال مل جائے، وہ بدھیمان ہوں، سمجھدار ہوں، سنکلپی ہوں، ان کے اندر بھی یہ تمنا ہو، تو بھوت بلی پرسنت نے جیسا کیا تھا ان کے ساتھ ان کے دھرسینا چاری نے، ایسے کوئی دھرسینا چاری ان کے دماغ میں یہ جنوانی لکھیں۔ آپ کہہ رہے آپ کتنے بڑے آچاریوں کا نام لے رہے ہیں ان چھوٹے سے کاموں کے لیے، ارے بھائی کام تو ایک ہی ہے نا، بڑے چھوٹے کیا ہوتے ہیں، کام تو وہی جنوانی کو اترنے کا ہے نا، ان نے بھی جنوانی لکھائی سرکشت کر کے، لکھ کر سرکشت کری، ان کے دماغ میں سرکشت کری ان نے، تو ان نے لکھ دی، تو ان کے دماغ کچا مال کتنا درلبھ، پھر ان کے لکھنے میں پانچ پانچ دس دس سال لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہی یہ دھندے پانی میں لگ جائیں تو سب بھول جائیں گے، بھول جائیں گے کہ نہیں بھول جائیں گے، بولیے، نرنتر رہے گا ابھیاس تو ہی قائم رہے گا۔ میں ایک بتاؤں آپ کو، ایک تکلیف، جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں آٹھ دس نیائپیس تھے، نیائپیس لائن لگ رہی تھی، اور سب دھندا پانی کرتے تھے، کپڑے کی دکانیں تھیں، یہ تھی سرگیانی چند نیائپیس، فلانے چند نیائپیس، اور بالکل میں آپ کو کیسا کہتا ہوں کہ ان کو بس کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، جے پر میں ہی بیٹھا ہوں، اب سمجھ لو کہ کیا تھا حال۔ تو میں نے کہا کیا، اور ہم بھی آئے تو ہم بھی نیائپیس تھے، تو سب کہتا ہوں کہ یہاں تو سات نیائپیس پہلے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ بھائی وہ نیائپیس کی ڈگری تو ان کے پاس تھی، لیکن ایک دن اس کے بعد ان نے اسے نہ اس وشے کو پڑھا، نہ پڑھایا، نہ دیکھا، اور دھندے پانی میں لگ گئے تو سب صاف ہو گئی، اور نیائپیس تو رہ گئی، ڈگری تو لگی رہ گئی، اور مال کچھ رہا ہی نہیں، اور نرنتر پرمارجت کریں گے ہم، لگائے رہیں گے، تو نیائپیس میں جتنی یوگتا ہوتی ہے، مانے جب ہم نے پریچا دے کے نیائپیس ہوئے تھے اس دن جتنی یوگتا تھی، اور آج اس کے پچاس برس بعد ہوئی، اس سے کم نہیں ہوئی، زیادہ ہوئی، تو پرمارجن کرے، وہ جیون اس میں لگائے۔ میرے بھائی جیون کیسے لگائے گا، ہوا کھا کے تو لگا نہیں سکتا، زندہ تو رہنا ہے تو جیون تو جب لگائے گا، مر کے تو لگا نہیں سکتا، بھگت سنگھ جیسا تو لگانا نہیں ہے، گاندھی جی جیسا لگانا ہے، کیسا لگانا ہے جیون، کہ جب سر گئے سولی پہ بھلا بیٹھا بھگوان دنیا نے جان لی کیسا ہو گیا، وہ جھگڑا ختم، اور گاندھی جیسے کہ نہیں مروں گا نہیں، پہلے دیش کو آزاد کر کے ہی مروں گا، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ تو ایسے لوگ چاہیے کہ زندہ رہیں اور جیون اس میں لگائیں، کتنا کٹھن کام ہے، اور اب اس میں اتنی ادبھت، سنگ مرمر کے پانیوں پہ لکھا دیا نا، تو ہزار برس تک کچھ بگڑنے والا نہیں، کوئی بہت بڑا طوفان نہیں آیا، تو زمین میں گاڑ دیا تو لاکھوں برس تک کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہ جب تک ان کے لکھ لکھا کے ان کے دماغ کو تیار کرتے ہیں، اور ایک دم اس کے لائق اور ابھیاس کر کے، دس پانچ برس پڑھ کے، دس پانچ برس پر ابھیاس کر کے، جب چالیس پچاس برس کے پروڑھ ہوتے ہیں، تب سماج کی میں پرتشٹھا پراپت کرتے ہیں، سماج ان کی باڑی میں پروڑھتا دیکھنے لگتی ہے کہ ان کی لیکھنی میں، ان کی باڑی میں دم ہے، تب تک چلا چل کے نمبر آ جاتا ہے، بال سفید ہونے لگتے ہیں، کیوں کیا کرے ہو تم دن جی، کتنا کٹھن کام ہے ہمارے لیے، ہمارے اپنی سماج کے لیے، سب کے لیے کتنا کٹھن کام ہے، اتنی محنت کر کے ایک پنڈت تیار کیا اور بس وہ چلا گیا, ایک ہاتھ کا جھٹکا لگا ختم ہو گیا. ایک دفعہ کی اور بات کہوں, یہاں پر بیٹھے نا رمیش بھنڈاری ہے نا, ہاں تمہاری بات سناتا ہوں تمہارے پتا جی کی, کہ تمہارے پتا جی یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک مہاویر جی کی ایک دکان بہت بڑی وہ لی 50,000 روپے مہینے پہ کرائے سے, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر میں ایک شو روم کھولوں گا بمل کا, کس کا ہے کپڑے کا, سمجھ گئے نا آپ. تو میں نے کہا بولے پنڈت جی آپ کے 2-4 لڑکے ہیں نا بےکار, ان کو میں یہاں لگا دوں گا کام سے, ان کو آپ بولتے نا تو میں میری دکان پہ لگا دوں گا انہیں کام سے. مطلب آجیوکا کی سمسیا ہوتی ہے نا, بہت لوگوں کو چنتا ہے, امریکہ تک کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ودیارتھی نکلتے ہیں ان کی آجیوکا کی چنتا کیا ہے, آجیوکا کی چنتا کیا ہے, ہمیں بڑی بہت چنتا ہے تو ہم اپنے یہاں کام دلا دیں گے, میل میں دلا دیں گے, نوکری دلا دیں گے, دکان پہ لگا دیں گے. میں نے کہا دیکھو بھنڈاری جی, یدی آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کو اپنا ایک نمبر شترو میں مانوں گا. اے کیا کرے, میں نے 5 سال پڑھا کے تیار کیا اور تم ان سے میٹر سے میں پہنچے اس میں لگوا دو گے, میں تو انہیں شترو مانتا ہوں, میں متر نہیں مانتا ہوں انہیں. کیا اے دھندے والے, اے لگا دیں گے اسے آئی ایس بنا دیں گے, ادھر اس میں لگا دیں گے, اسے اس میں لگا دیں گے, کیا کریں گے ہمارے کیے ہوئے مالک میں کو, اور وہ دنیا داری کے میں لگا دیں گے, وکیل بنا دیں گے, ڈاکٹر بنا دیں گے, لوٹنے میں لگا دیں گے, جھوٹ بولنے کے سرداروں میں لگا دیں گے. کیوں کیا کرے, ابھی لوگوں کی بدھی پہ پتھر پڑے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل نہیں, میں نے کہا پنڈت جی سمجھ میں آ گیا بالکل, آپ کو کرنا ہے نا تو آپ کہو کہ میں اسے 10,000 روپے مہینہ دوں گا اور تتو گیان کا پرچار کرے, پڑھائے لکھائے, یہ کرے, یہ کام میں لگا رہے, اس کی ساری زندگی بھر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور یہ ساری زندگی اس میں لگا دے. کیا احمد بھائی, میں آپ کو بہت, مجھے دل میں بات آ گئی اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں یہاں جے پور میں آنے والا تھا تو وہاں بابو بھائی, کھیم چند بھائی اور گودکا جی, یہ سب لوگ وہاں تھے اندور میں, اور میرے پروچن وغیرہ ہو رہے تھے, کلاسیں چل رہی تھیں, ان لوگوں نے میرے سے چرچا کی یہاں آنے کے بارے میں. بہت لمبی باتیں ہیں, میں سب نہیں سناؤں گا. انت میں کھیم چند بھائی نے ایک بات کہا, وہ میں آپ کو صرف سنانا چاہتا ہوں. گودکا جی سے کہا کہ گودکا جی میں ڈاکٹر بھارل کی طرف سے ایک گارنٹی لیتا ہوں کہ جیسا آپ نے کام سوچا ہے کرنے کا اسے 100 گنا اچھا کر کے یہ بتائیں گے. اور پھر میرے سے کہا کہ پنڈت جی میں گودکا جی کی طرف سے آپ سے گارنٹی لیتا ہوں کہ آج سے آپ کو روٹی دال کے بارے میں سوچنا نہیں پڑے گا. یہ بات ہے, میں جانتا ہوں ٹی وی بھی آ رہا ہے, بن رہا ہے, سب ہے, اور ان میں سے کئی لوگ موجود بھی ہوں گے, اس احمد بھائی کو پتا ہوگا اور کسی کو پتا ہوگا. یہ بات کہاں کہتے معلوم آپ کو, رتن لال سیٹھی کی دکان پر. رتن لال سیٹھی کون, ہاں مال گنج والے, اندور والے, یہ تمہارے پاٹو جی کے سسر, ہاں سمجھ گئے نا, ان کی دکان پہ بیٹھ کے کہا تھا. مجھے وہ درشیہ بھی یاد ہے کہ وہ کیسے بیٹھے تھے, ایسے بیٹھے تھے, میں ایسا بیٹھا تھا, گودکا جی ایسے بیٹھے, مجھے وہ سارا, وہ میں چترکار ہوتا تو ابھی چتر بنا کے دے سکتا تھا. کیا, اور وہ گودکا جی نے پورا بھروسہ کیا, 24 گھنٹہ کام کرنے میں ٹانگ نہیں لڑائی, بس میرا کام تو آپ کی یہ ویوستھا کرنا ہے, باقی آپ کو جو دکھے تتو وچار میں سو کرو, خیال میں آئی نا. اور میں نے پرتیجا کی تھی کہ میں کبھی بھی تنخواہ بڑھانے کی بات تو بہت دور, لیکن مہنگائی کی چرچا بھی کسی کے سامنے نہیں کروں گا کہ جس سے لوگوں کو یہ اندازہ لگے کہ تھوڑی مہنگائی پریشان کر رہی ہے پنڈت جی کو. اس لیول تک میں نے اس بات کو نبھایا, کسی سے ایک شبد نہیں کہا کبھی کہ میرے کو ہوا کام ہوتا ہے, ایسے شیٹھ چاہیے اور مجھے ایسے پنڈت چاہیے. تب وہ جنوانی جو ہے نا جیونت برتے گی, میں جنوانی کو جیونت برتنے کی بات کہہ رہا ہوں. کیسے برتے جنوانی جیونت, ارے بھائی ان ودوانوں کو جو تیار ہوئے ہیں آپ اسی کام میں لگا کر کے, اور ان کو آجیوکا سے نشچنت کرو, دوسری جگہ آجیوکا دے کر کے, تو نشچنت کرنے کی بات ہمارے گلے نہیں اترتی ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا, جو بھی سوچنا ہے اس بارے میں سوچو، کیونکہ ایک میں لکھ کے تیار کیا، دس پانچ سال میں وہ کام کرتا ہے اور تائیں تائیں فسٹ ہو جاتی ہے. اب پھر تیار کرو، پھر تیار کرو. وہ تو ایک دفعہ لکھا دیے پا دیے میں تو ہزار بار کو نشچنت ہو گئے. سمجھ گئے نا آپ؟ اب یہ تو نرنتر کا کام ہے، نرنتر کچا مال ملے، نرنتر لکھنے والے رہیں، نرنتر پڑھنے والے رہیں، مال تیار کرنے والے رہیں، جیون سمرپت کرنے والے رہیں، ان کو پانچ سال تک بھاونا بھر کر کے اندر سے جیون سمرپت کرنے کی ان کے بھاونا بھر کے ان کے من کو تیار کرنے والے رہیں. کیوں؟ تب یہ کوئی دنوانی جیونت کا مہان کاری ہو سکتا ہے. کوری اپنے پڑھ لیا انت دھرم نستم پسنتی پرتگاتمنا انیکانت مئی مورتی نت میو پرکاشتام. نت میو پرکاشتام مانے اس طرح وہ نرنتر پرکاشت رہے.